आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम अमन है और आज की क्लास में हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि फैब्रिक्स किसको बोलते हैं, फैब्रिक्स कितने तरह के होते हैं, और हमने इसी के साथ वूलन के बारे में भी पढ़ा था कि वूल फैब्रिक हमें कहाँ से मिलता है, उसके सोर्सेस क्या है और वो किन किन प्लेसेस पे पाया जाता है। हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरीके से जब हम शीप के ऊपर से फ्लीस को, यानी कि जो कोटिंग ऑफ हेयर है जिसको हम फाइबर बोलते हैं, जब हमें वो मिलता है तो उसको हम किस तरीके से प्रोसेस करके वूल फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं और वही वूल फैब्रिक आप मार्केट से ऊन की फॉर्म में खरीद कर लेके आते हैं, ऊन जिससे हम स्वेटर बुनते हैं। तो बच्चों, अब आप अपनी साइंस की बुक्स ओपन करिए और पेज नंबर 28 ओपन कर लीजिए। तो बच्चों, जैसा कि इस पेज नंबर के टॉप पे आपको ब्लू बॉक्स दिख रहा है, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। तो चलिए बच्चों रीड करते हैं। वूल इंडस्ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मेनी पीपल इन आवर कंट्री, बट सॉर्टर्स जॉब इज रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय अ बैक्टीरियम एंथ्रेक्स विच कॉजेज अ फेटाल ब्लड डिजीज कॉल्ड सॉर्टर्स डिजीज। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। तो बच्चों, इस चैप्टर के साथ साथ ही आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज दे रखी है ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स के बारे में। तो जैसा कि हमने पीछे प्रोसेसिंग पढ़ी है कि किस तरीके से फाइबर को हम वूल में कन्वर्ट करते हैं, कहाँ पर, वूलन इंडस्ट्री में। तो बच्चों, ऐसी जो इंडस्ट्रीज होती है वहां पर जो लेबर सॉर्टिंग का काम करते हैं, हमने जब प्रोसेसिंग पढ़ी थी वहां पर एक स्टेप पढ़ा था जिसका नाम था सॉर्टिंग। बच्चों, सॉर्टिंग प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर अलग अलग टेक्सचर के जो फाइबर होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, यानी उनको सेपरेट किया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉर्टिंग। और वो लेबर जो कि सॉर्टिंग प्रोसेस करते हैं, उन लेबर को बोला जाता है सॉर्टर्स। बच्चों, जो भी लेबर ये काम करते हैं उनको रिस्क होता है कि वो एंथ्रेक्स नाम के बैक्टीरिया से प्रभावित हो सकते हैं। प्रभावित माने इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ये जो बैक्टीरिया है एंथ्रेक्स, ये बहुत ही गंभीर बीमारी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फेटाल ब्लड डिजीज, बहुत ही गंभीर ब्लड की बीमारी इसकी वजह से होती है। तो बच्चों, इस बीमारी को बोला जाता है सॉर्टर्स डिजीज। तो बच्चों, ये रिस्क उन लेबर के लिए है जो कि वूलन इंडस्ट्री में काम करते हैं। लेकिन इसी के साथ वो वर्कर जो इंडस्ट्री में काम करते हैं और उनको अलग अलग बीमारियों के रिस्क होते हैं, तो ऐसी परेशानियां या फिर ऐसी बीमारियों को बोला जाता है ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, यानी ऑक्यूपेशन काम धंधा करते समय जो भी बीमारियां किसी भी इंसान को लगती है उसको बोला जाता है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। तो चलिए बच्चों आगे रीड करते हैं। तो इसी के साथ आपका ब्लू बॉक्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 3.4। डिबेट अमंगस्ट योर क्लासमेट वेदर इट इज फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमंस टू रियर शीप एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग वूल। तो बच्चों, ये एक्टिविटी आपके पर्सनलाइजेशन पे है, यानी आपकी पर्सनल वर्क है। आप सभी बच्चों ने क्या करना है, अपनी क्लासेस में आपने अपने फ्रेंड सर्कल में छोटे छोटे ग्रुप बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 या 6 स्टूडेंट्स के ग्रुप फॉर्म कर लिए और आपने उन ग्रुप के अंदर डिबेट करनी है। डिबेट का मतलब होता है बहस करना। आपने आपस में इस टॉपिक पे बहस करनी है कि जो इंसान शीप को रियर करते हैं, यानी उनके हेयर्स को उनकी बॉडी से रिमूव करके जो वुलन एक्सट्रैक्ट करते हैं, वूल फैब्रिक को बनाते हैं, तो क्या इंसानों को ये करना चाहिए? क्या ये काम सही है कि हम जानवर की बॉडी से हेयर्स को निकाल के हम अपने निजी मामले में उसको प्रयोग में ला रहे हैं? तो आपने इस टॉपिक के ऊपर डिबेट करनी है। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 3.2, सिल्क। बच्चों, आपने सिल्क का नाम तो पहले कई बार सुना ही होगा। हम सिल्क को सरल भाषा में यानी हिंदी भाषा में रेशम कहते हैं। आपने सुना ही होगा रेशम के बारे में। बच्चों, ये एक ऐसा कपड़ा होता है जो कि बहुत ही महंगा होता है। पुराने टाइम पे जो राजा वगैरह होते थे, वो सिल्क के कपड़े यानी रेशम के धागे से बुने हुए कपड़े पहना करते थे। आजकल के टाइम पे रेशम धागे का कपड़ा यानी प्योर फॉर्म में सिल्क बहुत ही महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है। तो आज हम सिल्क के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सिल्क फाइबर्स आर आल्सो एनिमल फाइबर्स। सिल्क वॉर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर्स। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सीरी कल्चर। बच्चों, इसको पेंसिल से मार्क कर लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है सीरी कल्चर की। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि सिल्क नाम का जो फाइबर है उसको हम एनिमल फाइबर भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये फाइबर अगेन हमको कहाँ से मिलता है? एनिमल से, जानवर से मिलता है। और बच्चों, जो एनिमल हमको सिल्क फाइबर प्रोवाइड करता है उस एनिमल को हम बोलते हैं सिल्क वॉर्म। और ये जो सिल्क वॉर्म होता है यही सिल्क फाइबर को स्पिन करते हैं यानी इसको प्रोड्यूस करते हैं। और बच्चों, हम सिल्क वॉर्म की रियरिंग करके सिल्क को ऑब्टेन करते हैं और इस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं सीरी कल्चर। यानी ये काम जिससे सिल्क वॉर्म की रियरिंग से हमको सिल्क ऑब्टेन होता है उसको हम बोलते हैं सीरी कल्चर। तो चलिए आगे रीड करते हैं। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क इट इज नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। इससे पहले कि हम ये जाने कि किस प्रोसेस से हमें सिल्क मिलता है, हम पहले ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से सिल्क मोथ यानी वो एनिमल जिससे हमको सिल्क ऑब्टेन होता है उसकी लाइफ साइकिल क्या है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। द फीमेल सिल्क मोथ लेस एग्स फ्रॉम विच हैच लार्वे विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स। वेरी इंटरेस्टिंग है ये। कैटरपिलर्स का नाम हमने पहले भी सुना हुआ है। ये ग्रीन कलर के छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिनको हम बोलते हैं कैटरपिलर। तो बच्चों, ये मोथ यानी सिल्क मोथ वो जानवर है जो कि सिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स को बनाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि फीमेल सिल्क मोथ यानी एक कीड़ा जो कि एग्स ले करता है यानी वो अंडे देता है, इन्हीं अंडों से लार्वे निकलते हैं। अब बच्चों, आपने देखा ही होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे डॉग है, डॉग का जो बेबी होता है उसको हम बोलते हैं पपी। उसी तरीके से जो बिल्ली यानी कैट, उसका जो बेबी होगा उसको हम बोलते हैं किटन। उसी तरह से जो फीमेल सिल्क मोथ है, जब इसके अंडों में से इसके बच्चे निकलेंगे तो उनको बोला जाता है लार्वे, और इन्हीं को हम कहते हैं कैटरपिलर या फिर सिल्क वॉर्म जो कि सिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल है। ये सिल्क बनाते हैं। आगे, दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। अब बच्चों, ये जो सिल्क वॉर्म है ये अगेन ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, और जब ये बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद ये अपनी जिंदगी यानी अपनी लाइफ की नेक्स्ट स्टेज में एंटर कर जाएंगे जिसको हम बोलते हैं प्यूपा। फर्दर, ये जो प्यूपा है इस स्टेज में क्या होता है, ये अपने ही लिए एक नेट यानी एक जाल बनाता है। यहाँ पे लिखा है इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ, देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ एट। ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ द हेड द कैटरपिलर सेक्रीट्स फाइबर मेड ऑफ अ प्रोटीन विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम्स सिल्क फाइबर। तो बच्चों ये क्या करता है, प्यूपा स्टेज में अपने आसपास ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बनाना स्टार्ट कर देते हैं, उसको बुनना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद ये इसी में लटक जाते हैं, जैसा कि आप अपनी फिगर नंबर 8 में देख सकते हैं, 3.8 में। और बच्चों जब ये अपनी मूवमेंट करते हैं हेड की, उस टाइम पे ये कुछ ऐसे फाइबर सेक्रीट करते हैं जो कि प्रोटीन से बने हुए होते हैं। जैसे ही ये प्रोटीन्स यानी ये फाइबर एयर के कॉन्टैक्ट में आते हैं, यानी जैसे ही इनके ऊपर हवा टच करती है, तभी ये हार्डन हो जाते हैं, ये सख्त हो जाते हैं, और इस सख्त स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिल्क फाइबर। आगे सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर एंड टर्न्स इनटू प्यूपा। कुछ ही टाइम बाद ये जो कैटरपिलर होते हैं ये अपने आप को पूरे तरीके से सिल्क फाइबर में कवर कर लेते हैं, अपने आप को उससे ढक लेते हैं, और ये अपनी न्यू स्टेज में पहुंच जाते हैं जिसको बोला जाता है प्यूपा। दिस कवरिंग इज नोन एज कुकून। और बच्चों इसी कवरिंग को बोलते हैं कुकून। अगर आप ध्यान से फिगर नंबर 3.9 में देखेंगे ई पार्ट डेट इज कुकून, यहां पर आप देख सकते हैं कि कैटरपिलर ने अपने आप को पूरे तरीके से सिल्क फाइबर में कवर कर लिया है, और अब हम इस स्टेज को बोल रहे हैं कुकून, यानी उसके आसपास जो कवरिंग है उस कवरिंग को बोला जाता है कुकून। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोथ कॉन्टिन्यूस इनसाइड द कुकून। अब कुकून तो बन गया, इसके बाद जो फर्दर डेवलपमेंट होती है यानी जो आगे ग्रोथ होती है प्यूपा की, वो इस स्ट्रक्चर के अंदर होती है, जैसा कि आप फिगर 3.9 लास्ट दैट इज एफ पार्ट में देख सकते हैं कि बाहर तो कुकून है, हार्ड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो प्यूपा यानी जो एनिमल है उसकी ग्रोथ हो रही है। अब जब ये कुकून फूटेगा यानी जब ये कुकून पूरा का पूरा टूट जाएगा, तो इसके अंदर से एक न्यू एनिमल दैट इज सिल्क मोथ निकलेगा। तो बच्चों इस तरीके से ये पूरी लाइफ साइकिल इन्होंने बता रखी है सिल्क मोथ की, यानी सिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल की। आगे सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। तो बच्चों इस एनिमल ने जो भी सिल्क फाइबर बनाया, हम इसी सिल्क फाइबर की मदद से सिल्क क्लोथ को बनाते हैं, उसको वीव करते हैं। वीव यानी किसी भी चीज को बुनना। और इसी के साथ एक और नॉलेज की बात ये है कि ये जो सॉफ्ट सिल्क यार्न होता है ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है जितना कि स्टील की एक थ्रेड यानी मेटल। अब आपने घर में स्टील के बर्तन देखे ही होंगे, वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उतने ही स्ट्रॉन्ग ये सिल्क का धागा यानी इसका यार्न होता है। द सिल्क यार्न दैट इज थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क मोथ। देयर इज अ वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर, coarse, smooth, shiny, etc. Thus, tussar silk, muga silk, kosa silk, etc. are obtained from cocoons spun by different types of moth. तो बच्चों जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि जो सिल्क का धागा होता है वो हमको कुकून से मिलता है, और ये कुकून कौन बनाता है, सिल्क मोथ। अब हमें ये भी पता है हर एक जानवर की बहुत सारी प्रजातियां होती है, उसी प्रकार से ये जो सिल्क मोथ एनिमल है ये भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अब ये अलग अलग टाइप्स के हैं तो ये अलग अलग टेक्सचर, अलग अलग कलर के, अलग अलग क्वालिटी के सिल्क फाइबर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि कोई स्मूथ करता है तो कोई शाइनी करता है तो कोई कोअर्स यानी स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसी के एग्जाम्पल्स हैं टसर सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क। ये अलग अलग सिल्क हैं जो कि अलग अलग तरह के एनिमल्स सिल्क मोथ से पाए जाते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज द मलबेरी सिल्क मोथ। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि जो सबसे कॉमन सिल्क मोथ है यानी जो सबसे आम मिलने वाला सिल्क फाइबर है वो किस जानवर से मिलता है? मलबेरी सिल्क मोथ से। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, लस्ट्रस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटिफुल कलर्स। तो जैसा कि यहाँ लिखा है कि इस मोथ से, इस सिल्क मोथ से मिलने वाला जो सिल्क का फाइबर है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, लस्ट्रस यानी शाइनी चमकदार और इसी के साथ इलास्टिक नेचर का होता है। हम इस फाइबर को अलग अलग सुंदर रंगों में भी रंग सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ अगली है हमारी एक्टिविटी नंबर 3.5। कलेक्ट पीसेस ऑफ सिल्क क्लोथ ऑफ वेरियस टाइप्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। यू कैन फाइंड देम इन अ टेलर्स शॉप अमंग द हीप ऑफ वेस्ट कट पीसेस। टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट और टीचर एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सिल्क सच एज मलबेरी सिल्क, टसर सिल्क, एरी सिल्क, मोगा सिल्क एटसेट्रा। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ द सिल्क विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर्स। ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मोथ हूज कैटरपिलर्स प्रोवाइड द वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्क। तो बच्चों, आपने इस एक्टिविटी में क्या करना है? आपने अलग अलग तरह के यानी अलग अलग प्रकार के सिल्क के कपड़े, छोटे छोटे टुकड़े आपने इकट्ठे करने हैं और उनको कलेक्ट करके आपने एक स्क्रैप बुक आती है कलरफुल पेजेस वाली, आपने क्या करना है उनमें पेस्ट कर देने हैं इन क्लोथ को। पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी मदर या फिर किसी की भी हेल्प से आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सिल्क का जो टुकड़ा है यानी क्लोथ है वो किस टाइप का है। मलबरी सिल्क है, टसर सिल्क है, मुगा सिल्क है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आपने आइडेंटिफाई करना है कि उसका नेम क्या है। और इसी के साथ आपने उन मोथ एनिमल्स की पिक्चर कलेक्ट करनी है जिसके कैटरपिलर्स अलग अलग टाइप्स के सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज योर एक्टिविटी 3.5। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी 3.6। टेक एन आर्टिफिशियल दैट इज सिंथेटिक सिल्क थ्रेड एंड अ प्योर सिल्क थ्रेड। बर्न दिस थ्रेड्स केयरफुली। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल व्हाइल बर्निंग? नाउ बर्न अ वुलन फाइबर केयरफुली। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और डैट ऑफ प्योर सिल्क? कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? बच्चों, आपने इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपने एक आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड लेनी है और दूसरी ओर आपने प्योर फॉर्म में सिल्क थ्रेड लेनी है। दोनों को आपने केयरफुली जला देना है, डैट इज उसको बर्न करना है एंड उन दोनों की आपने स्मेल नोटिस करनी है कि जलते वक्त उन दोनों की स्मेल डिफरेंट है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक वुलन फाइबर लेना है और उसको भी एज इट इज बर्न कर देना है जैसे कि आपने उन दोनों फाइबर्स को किया है। बर्न करने के बाद आपने अगेन इसकी स्मेल नोटिस करनी है। क्या इसकी स्मेल प्योर सिल्क या फिर आर्टिफिशियल सिल्क के जैसी ही है? आपने इसको नोटिस करना है एंड ऑब्जर्व करना है और अगर है भी तो आपने इसका रीजन देना है। तो बच्चों, आप एक बार इस एक्टिविटी को ट्राई करिएगा लेकिन ध्यान रखिएगा अंडर द गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स की गाइडेंस में ही आपने इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। तो चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी दैट इज एक्टिविटी 3.7, फोटोकॉपी फिगर 3.9, कट आउट पिक्चर्स ऑफ द स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ एंड पेस्ट देम ऑन पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड और चार्ट पेपर, जंबल देम. नाउ ट्राई एंड अरेंज द स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस इन अ साइक्लिक फॉर्म. Whoever does it fastest wins. You may also describe the life history in your own words. Write it down in your scrapbook. बच्चों, आपने इस एक्टिविटी में क्या करना है? फिगर 3.9 जो कि लाइफ हिस्ट्री बताती है सिल्क मोथ की, आपने उसको फोटोकॉपी करवानी है एंड उसके अलग अलग स्टेजेस की जो पिक्चर है उनको कट आउट कर लेना है. कट करने के बाद आपने एक कार्डबोर्ड या फिर चार्ट पेपर के ऊपर सीक्वेंस वाइज उनको पेस्ट करना है कि सबसे पहले कौन सी स्टेज आती है, उसके बाद लाइफ में कौन सी स्टेज आती है सिल्क मोथ की. आपने इन सबको अरेंज करके पेस्ट कर देना है. एंड आफ्टर दैट अगर आप चाहो तो इनको साइक्लिक फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हो बाय पुटिंग एरो इन बिटवीन देम कि ये स्टेज है, इस स्टेज के बाद लाइफ में ये स्टेज आती है, इसके बाद सिल्क मोथ की लाइफ में ये स्टेज आती है, और इन सबके बीच में आप एरो बना देना. तो इस तरीके से आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं. और इसी के साथ आप स्क्रैप बुक में लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ आप अपने वर्ड्स में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो इसको ट्राई जरूर करिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रॉम कोकून टू सिल्क. तो चलिए रीड करते हैं. For obtaining silk, moths are reared and their cocoons are collected to get silk thread. तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस तरीके से सिल्क को obtain करते हैं. तो सबसे पहले है rearing silk worm. A female silk moth lay hundreds of egg at a time. जैसा कि आप फिगर 3.10, नीचे आपको एक फिगर दिख रही होगी 3.10, that is A part. फीमेल सिल्क वॉर्म मोथ विद एग्स. यहाँ पर आपको एक फीमेल सिल्क वॉर्म नजर आ रही है जिसने बहुत सारे एग्स को प्रोड्यूस करा है. तो बच्चों यही एग्स फर्दर आगे जाके लार्वे डेट इज कैटरपिलर बनाते हैं. ये जो फीमेल सिल्क मोथ होती है ये एक पर्टिकुलर टाइम पे हंड्रेड्स यानी बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एग्स को प्रोड्यूस करती है. The eggs are stored carefully on strips of cloth or paper and sold to silkworm farmers. ये जो eggs यानी ये जो अंडे होते हैं इनको बहुत ही ध्यान से पेपर या फिर कपड़े के स्ट्रिप्स के ऊपर अच्छे तरीके से स्टोर करके रखते हैं और इनको किसको बेच दिया जाता है? silkworm farmer. उन फार्मर को जो कि silkworm सिल्क का काम करते हैं. The farmers keep egg under hygienic conditions and under suitable conditions of temperature and humidity. ये farmer क्या करते हैं? इन अंडों को बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी देखभाल करते हैं. Hygienic condition यानी साफ सुथरी जगह पे इनको रखते हैं. In suitable condition. Suitable condition का मतलब वो temperature और वो humidity या फिर वो environment जो कि इन अंडों को चाहिए आगे ग्रोथ करने के लिए. फार्मर्स इन अंडों को उसी एनवायरमेंट में रखते हैं. द एग्स आर वार्म्ड टू अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वे टू हैच फ्रॉम एग्स. दिस इज डन व्हेन मलबेरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स. तो बच्चों एक पेड़ होता है जिसको हम बोलते हैं मलबेरी ट्रीज. हमारे जो सिल्क वॉर्म होते हैं वो इन्हीं ट्रीज के ऊपर आगे ग्रोथ करते हैं. तो ये जो लार्वे है ये कहाँ पर बनते हैं? ऑन दी मलबेरी ट्रीज. जैसा कि आप 3.10 फिगर में बी पार्ट में देख सकते हैं कि किस तरीके से लीफ के ऊपर जो है हमारे सिल्क वॉर्म्स को स्टोर करके रखा हुआ है. द लार्वे कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म ईट डे एंड नाइट and increase enormously in size that you can see in C part. बच्चों ये जो लार्वे होते हैं ये इन्हीं मलबेरी ट्रीज के ऊपर अपनी ग्रोथ करते हैं और यहीं से खाना प्राप्त करके ये बड़े होते हैं. जैसा कि आप सी पार्ट में देख सकते हैं। द लार्वे आर कैप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेस अलोंग विद फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स। आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कुकून्स। जैसा कि आप डी पार्ट में देख सकते हैं, ये जो लार्वे होते हैं ये कुछ टाइम तक क्लीन यानी साफ सुथरी बैम्बू ट्रेज में रहते हैं। उसके बाद इन बैम्बू ट्रेज में रहने के बाद 25 से 30 दिनों के बाद ये जो कैटरपिलर होते हैं ये खाना बंद कर देते हैं, यानी मलबेरी के पत्तों को खाना बंद कर देते हैं, और उसके बाद ये बैम्बू के छोटे से चैम्बर में चले जाते हैं जहां पर जाके ये अपने कुकून्स को बनाना शुरू कर देते हैं। कुकून्स माने अपने आसपास सिल्क फाइबर की फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं और अपने आप को उसमें कवर कर लेते हैं। स्मॉल रैक्स और ट्विक्स मे बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेस टू विच कुकून्स गेट अटैच्ड। द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन्स द कुकून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मोथ। इन बैम्बू के अंदर यानी इन ट्रेस के अंदर छोटे छोटे रैक्स या फिर छोटे छोटे ट्विक्स टाइप के जो स्ट्रक्चर हैं इनको दिए जाते हैं, जहां पर ये कुकून क्या करते हैं अपने आप को ढकने के बाद उन स्ट्रक्चर के साथ ही अटैच हो जाते हैं, उनके साथ जुड़ के रहते हैं। ये जो कैटरपिलर है या फिर सिल्क वॉर्म जिसको हम कहते हैं, ये अपने आसपास कुकून का स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसी के अंदर ये डेवलप यानी ग्रो होके बड़े होके ये सिल्क मोथ बन जाते हैं। तो इसके अगला प्रोसेस हमारा आता है प्रोसेसिंग सिल्क। अ पाइल ऑफ कुकून्स इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। द कुकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज्ड टू स्टीम। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कुकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। तो बच्चों, ऐसे ही बहुत सारे कुकून्स को इस्तेमाल करके हम सिल्क फाइबर बनाते हैं। किस तरीके से? इन कुकून्स को या तो हम ठीक सूरज के नीचे रख देते हैं या फिर हम इनको बॉयल करते हैं या फिर स्टीम करते हैं। स्टीम यानी इनको भाप की कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कि सिल्क फाइबर है, जो छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वो सेपरेट हो जाते हैं। किन से? कैटरपिलर से। जैसा कि हमने पढ़ा है कि कैटरपिलर अपने आसपास एक कवरिंग बना लेते हैं सिल्क फाइबर की, जिसको बोला जाता है कुकून। तो बॉयल करना या फिर इनको गर्म टेम्परेचर देने की वजह से ये जो बाहर का फाइबर है, ये जो कवरिंग है, ये उस कैटरपिलर से अलग हो जाती है। अब ये जो सिल्क फाइबर है इसको हम प्रोसेस करके फर्दर सिल्क की फॉर्मेशन करते हैं और इस प्रोसेस को बोला जाता है रीलिंग द सिल्क। तो आप इस डेफिनेशन को पेंसिल से मार्क कर लीजिए, रीलिंग द सिल्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे, रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स विच अनवाइंड द थ्रेड और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कुकून। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड विच आर वूवन इनटू सिल्क क्लोथ बाय वीवर्स। अब ये जो रीलिंग का प्रोसेस है ये बहुत ही खास तरीके की मशीनों के अंदर होता है, जहां पर ये जो कुकून के जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, इन सभी को अलग अलग कर दिया जाता है, जिसके बाद ये अलग अलग थ्रेड के जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनको इकट्ठे एक साथ स्पन करते हैं, स्पन करके इनको सिल्क थ्रेड में फॉर्म कर देते हैं, यानी इनसे हम रेशम के धागे बनाते हैं। और इन्हीं धागों की मदद से जो वीवर्स होते हैं यानी जो कपड़ों की सिलाई करते हैं, वो इन रेशम के धागों की मदद से रेशम का कपड़ा बनाते हैं, जिसको हम सिल्क क्लोथ बोलते हैं। तो बच्चों, ये प्रोसेस था कि किस तरीके से हम सिल्क मोथ से सिल्क को ऑब्टेन करते हैं और उस सिल्क फाइबर की मदद से हम आगे जाकर सिल्क के कपड़े बनाते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट किस तरीके से कुकून से हमने सिल्क ऑब्टेन किया एंड उसको प्रोसेस करके रीलिंग करी। रीलिंग करने के बाद हमने सिल्क क्लोथ बना दिए। तो बच्चों, ये चैप्टर में हमने फैब्रिक के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से हमें एनिमल से अलग अलग तरह के फाइबर मिलते हैं और उन फाइबर की मदद से हम अपने फैब्रिक्स तैयार करते हैं और आगे जाके उन्हीं फैब्रिक्स की मदद से हम अपने कपड़े बनाते हैं। हमने इस चैप्टर में वुलन के बारे में पढ़ा और सेकंड हमने सिल्क के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से इनके सोर्सेस है, कैसे कैसे इनकी प्रोसेसिंग है एंड किस तरीके से फाइनल हमको रिजल्ट मिलता है, डेट इज क्लोथ। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। और बच्चों, आपका होमवर्क है, आपने अच्छे तरीके से इस चैप्टर की रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के बाद जितनी भी डेफिनेशंस मैंने आपको मार्क कराई है, आपने अच्छे से उनको लर्न करना है। और ये जो सिल्क मोथ की लाइफ साइकिल है, आपने इस डायग्राम को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। आफ्टर दैट जो इसकी नेक्स्ट बैक एक्सरसाइज है वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।